जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजक आचार्य अष्टावतार सत श्री श्री मच डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी ललिता विशाखा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की श्री श्री गौर निताय की लक्ष्मी नरसिंह देव की सद गोस्वामी प्रभु की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल द बॉडीज आप सब भक्त वृंद की आप सब भक्त वृंद की गुरु गौरांग की गौर प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद दो अध्याय चार सृष्टि प्रक्रम श्लोक संख्या छे भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वा दुर्विभाव्यम अधिस्वरे मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनमें भगवान के गुण पाए जाते हैं लेकिन उनमें कृष्ण सर्वोच्च है क्योंकि कोई उनसे बढ़कर नहीं है और कोई उनसे समान नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को समस्त कारणों का कारण स्वीकार करते हैं लेकिन इस क्षुद्र धरालोक के अति लघु मस्तिष्क वाले व्यक्ति भगवान को अपने जैसा समझते हैं। इस प्रकार सब भगवत गीता में जब भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सर्वे स्वरा हूं सर्वे सर्वा हूं तो ज्ञानी तथा संसारी विवादक उनका उपहास करते हैं जिससे भगवान को अत्यंत खेद पूर्वक कहना पड़ता है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं वे मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते और मेरे परम राज्य को नहीं जानते। भगवद्गीता 9:11 ब्रह्मा तथा शिव अन्य देवताओं की बात ही क्या भूत हैं अर्थात शक्तिमान उत्पन्न देवता हैं जो विश्व के कार्यों को उसी तरह चलाते हैं जिस तरह राजा द्वारा नियुक्त मंत्री चलाते हैं। ये मंत्री ईश्वर या नियंत्रक हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तो महेश्वर है, अर्थात इन नियंत्रिकों के भी सृष्टा है। अल्पज्ञ इसे नहीं जानते, अतएव वे भगवान का खुला उपहास करते हैं, क्योंकि वे मनुष्यों पर यदा कदा अहेतु की कृपा करके हमारे समक्ष मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान मनुष्य की तरह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह या भगवान है, और उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। वे शक्ति तथा शक्तिमान दोनों हैं। महाराज परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी से भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन करने के लिए नहीं कहा। वे सर्वप्रथम भगवान की सृष्टि के विषय में सुनना चाह रहे थे, नहीं सुखदेव गोस्वामी ने यह कहा कि राजा को भगवान की दिव्य लीलाएं सुननी चाहिए। चूंकि समय कम था, अतएव गोस्वामी चाहते तो सब बातों को छोड़कर सीधे दशम स्कंद में पहुंच जाते, जैसा कि पेशेवर वाचक करते हैं, लेकिन न तो राजा ने नहीं श्रीमद् भागवत के महान वक्ता ने भागवत के प्रबंधकों की भांति उछल कूद की। दोनों ही विधि पूर्वक आगे बढ़ते गए, जिससे भविष्य के श्रोता तथा वाचक दोनों ही श्रीमद् भागवत सुनाने की विधि से शिक्षा ग्रहण कर सके। जो लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति के वश में हैं, अथवा दूसरे शब्दों में जो लोग इस भौतिक जगत में हैं, उन्हें सर्वप्रथम यह जानना चाहिए कि भगवान की बहिरंगा शक्ति किस तरह से परम पुरुष के निर्देशानुसार कार्य करती है। बाद में उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्यकलापों में वह प्रवेश कर सकता है। संसारी लोग अधिकांशतः कृष्ण की बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी के उपासक होते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते दुर्ग देवी या दुर्गा देवी भगवान की शक्ति की छाया मात्र। उनकी चमत्कारी शक्ति के पीछे भगवान का निर्देशन कार्य करता रहता है, जैसा कि भगवद गीता में 9:10 पुष्टि किया गया है। ब्रह्म संहिता इस बात की पुष्टि करती है कि दुर्गा शक्ति गोविंद के निर्देशानुसार कार्य करती है। अतएव नवदीक्षित भक्त को चाहिए कि भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली दिव्य लीलाओं में छलांग न लगाकर उनकी सृजनात्मक शक्ति की विधि के विषय में जिज्ञासा करते हुए जाने कि परमेश्वर कितने महान है। चैतन्य चरितामृत में भी सृजनात्मक शक्ति के वर्णन की और उसमें भगवान के हाथ के हाने हाथ के होने की व्याख्या की गई है, और श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक नवदीक्षित भक्तों को आगाह करता है कि वे कृष्ण की महानता विषय इस ज्ञान की उपेक्षा करके गड्ढे में न गिरे। कृष्ण की महानता को जान लेने के बाद ही कोई उन पर अविचल विश्वास कर सकता है, अन्यथा लोगों के नेता भी सामान्य लोगों की तरह भगवान कृष्ण को अनेक देवताओं में से एक या कोई ऐतिहासिक व्यक्ति या कोरी कपोल कल्पना मानने की भूल करेंगे। भगवान के वृंदावन या द्वारका की दिव्य लीलाएं उन्हीं व्यक्तियों द्वारा आस्वाद्य है जिन्होंने पहले से अपने को उच्च आध्यात्मिक बारीकियों से अवगत करा लिया है। सामान्य व्यक्ति ऐसे स्तर को सेवा तथा जिज्ञासा की क्रमिक विधि से प्राप्त करता है, जैसा कि हम महाराज परीक्षित के आचरण से देखेंगे। ज्ञानांजनशलाकर चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णु स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप पदामहियं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणललिता श्री रघुनाथान्वितान्तं सजीव साद्वैतं सार्वदूतं परिजनसहितं हे कृष्ण करुण विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे भूयैव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वम दुर्विभाव्यम अधिस्वरे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। वो यह विविध स्वामी भगवान आत्म माया अथेदम सृजते विश्वम। तो ये विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना भगवान अपनी आत्म माया से करते हैं तो वे जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज, और कहते हैं कि बड़े बड़े मुनिंद्र इंद्र भी इसमें गोथा भटक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अचिंत। तो भगवान की सृष्टि विचित्र, गोविंद तेरा जगत विचित्र, गोविंद की सृष्टि विचित्र है। सामान्य मनुष्य की बात कहां, देवी देवता है बड़े बड़े वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण की सृष्टि दो है, एक है आध्यात्मिक सृष्टि और दूसरी है भौतिक सृष्टि, और दोनों सृष्टि की रचना भगवान ने अपने आनंद के लिए की है। अपने जब हम कुछ रचना करते हैं सर्जन करते हैं तो अपने आनंद के लिए, घर का सर्जन करते हैं अपने आनंद के लिए, कोई पड़ोसी के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। पत्नी बच्चे सर्जन करते हैं तो बच्चे अपने आनंद के लिए, तो भगवान सृष्टि करेंगे तो उनके आनंद के लिए होगी कि दूसरों के? लॉजिक, सिंपल लॉजिक, हम जो रचना करते हैं हमारे लिए, तो भगवान रचना करेंगे वो भी हमारे लिए। लेकिन ये अज्ञानता है, देवी देवता है विभर्मी भ्रमित हो जाते हैं। भगवान दोनों सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए करते हैं, हमारी रचना भगवान ने की जीवों की वो भी भगवान के आनंद के लिए, हमारा भगवान ने हमारी हमारा भगवान ने रचना की वो भी भगवान के आनंद के लिए की, नहीं हमारे आनंद के लिए। लेकिन विमूढ़ अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, मैंने ये किया मेरे आनंद के लिए, विमूढ़ आत्मा। तो देवी देवता भी उसमें भ्रमित हो जाते, उनकी सृष्टि। तो भगवान की सृष्टि, आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि का प्रयोजन क्या था? उनके आनंद के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान से छीन लेते हैं और कहते हैं मेरा है, और ये मेरे आनंद के लिए है। तो भगवान के आनंद के लिए है और हम वो चीज हमारे आनंद के लिए उपयोग करते हैं, वो हमारे आनंद के लिए है नहीं, इसलिए वो चीज हमें दुख ही देगी, क्योंकि वो हमारी नहीं है और हमारे आनंद के लिए नहीं है। और हम भगवान से अलग कर देते, इसको बोलते माया। एक्चुअली सब कुछ भगवान ही है, कृष्ण ही है, सब कुछ। एवरीथिंग इज गॉड, बट डोंट मेक मिस्टेक, बिकॉज गॉड इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। नो, वैष्णव एम्फसाइजेस दिस डिफरेंस। क्या डिफरेंस? गॉड इज एवरीथिंग, यस, बट एवरीथिंग इज नॉट गॉड। गॉड हम गॉड नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट, टेबल इज नॉट गॉड, बट गॉड इज एवरीथिंग। तो भगवान ने ये सृष्टि की, आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। लेकिन जीव जो अलग बना लेता है उसको बोलते हैं माया। नारद मुनि कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत में कि अहम एवासम एवाग्रे नान्यत सत असत परम। दूसरे से वो कहते हैं जो भगवान से तू अलग देख रहा है उनका नाम है माया। एवरीथिंग सर्वेदम खल्व ब्रह्म, एवरीथिंग इज कृष्ण। सर्वेदम इदम खल्व ब्रह्म, एको नारायणो आसित, एकलो ईश्वर कृष्ण। गॉड इज एवरीथिंग। हम उनको सेपरेट कर लेते, दैट इज कॉल्ड माया। तो ये भौतिक सृष्टि की रचना भगवान इसलिए करते हैं कि जहां जीव जो भगवान बनना चाहता है, अपनी छोटी सी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना चाहता है, अपनी छोटी सी इच्छा से भगवान बनना चाहता है, तो उनको फिर से रिफॉर्म करने के लिए ये भौतिक जगत की रचना। और आध्यात्मिक जगत की रचना क्योंकि अपने आनंद के लिए, वहां सब कुछ का सेटअप ऐसा है कि उनको आनंद मिलता रहे। आध्यात्मिक जगत में भगवान ने ऐसा सेटअप किया कि हर पल श्री कृष्ण को ही आनंद मिलता रहे। तो क्या वहां के लोगों को आनंद नहीं मिलेगा, खाली कृष्ण को मिलेगा? नहीं, वहां के सब जन श्री कृष्ण की सेवा में इतना आनंद लुटाते हैं, इतना आनंद प्रमोद करते हैं कि श्री कृष्ण के भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा आनंद करते हैं उनकी सेवा में। तो वहां सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड, एवरीथिंग इज गियर्ड अप टू प्लीज कृष्ण, टू गिव हिम प्लेजर। सब कुछ चीज वहां, और वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, भौतिक कंसेप्शन नहीं है, सब भगवान की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लगे हैं। सब जीवात्मा, सब चिंतामणि, प्रासाद, महल, झील, सर, तालाब, नदी, गायें, पेड़, कल्पवृक्ष, सब कुछ, चीटी चिड़िया, एवरीथिंग, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगे हैं। और वो सेवा में वो सब आनंद प्रमोद कर रहे हैं, आनंद प्रमोद। वहां एक दूसरों की टांग नहीं खींचते, वहां सब कहते, राधा रानी खुद कहती, हे कृष्ण, ये मेरे से बहुत अच्छा आपका भक्त है, इनको स्वीकार, इनकी सेवा स्वीकार। ये परिभाषा, उधर भक्तों की परिभाषा, गोपियों की पर, सखी की परिभाषा। क्या है सखी की परिभाषा? कि अपने से दूसरों को ज्यादा प्यार करे, वो है सखी, अपने से दूसरों को प्यार करे। तो वहां के सब इनहेबिटेंट्स, सब वहां के निवासी गण अपने से दूसरों को ज्यादा प्यार करते और अपने से दूसरों की सेवा को ज्यादा समझते हैं। मेरे से ये सेवक अच्छा, मेरे से ये सेवा अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत में नो कॉम्पिटिशन, नो इल फीलिंग्स, कोई प्रकार की निंदा, चुगली, द्वेष, कॉम्पिटिशन नहीं। भौतिक जगत का की खासियत है कॉम्पिटिशन। यहाँ पढ़ने में कॉम्पिटिशन, बाद में नौकरी में कॉम्पिटिशन, नौकरी मिली तो नौकरी में नौकरी के कलीग के साथ कॉम्पिटिशन, और बस कॉम्पिटिशन ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बिना और कुछ नहीं भौतिक जगत में। और होने पर भी डर रहेगा कि ये सब छिन जाएगा, ये सब चला जाएगा, इनसिक्योर। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे धनवान लोग अपने आप में इनसिक्योरिटी समझते। क्यों समझते हैं? क्योंकि वो समझते मैं शरीर हूं, शरीर मर जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ कौन मर जाएगा, तो शरीर मर जाएगा और अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए वो इनसिक्योर हो गया है ना। लेकिन भगवान के भक्त नारायण परा सर्वे कुतस्सन विव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकस्य तुल्यार्थ दर्शिना। उनके लिए नरक क्या या स्वर्ग क्या या अपवर्ग क्या, भगवान का धाम क्या, जहां भी वो जाएगा तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि अंतस्तस्य गृदाब्रुज। खुद भगवान का धाम है ना। साधुनाम हृदयाम च अहम्, तो जहां भगवान रहते हैं वहां उनका धाम। भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो भगवान का भक्त का शरीर धाम हो गया, तो उनको नर्क हो या धाम हो, खुद ही धाम है ना। तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि, तो उनके लिए तुल्यार्थ दर्शिन। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत और उनकी रचना। तो परास्य शक्ति विविध सूयते, अपनी आत्म माया भगवान, भगवान आत्म माया, अपनी शक्ति माया शक्ति, अपनी कई कई प्रकार की शक्ति, कई कई प्रकार की शक्ति। लेकिन तीन प्रकार की शक्ति में हम उनको देख सकते हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तथस्थ शक्ति। जीव तथस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। सो जीव तथस्थ शक्ति है और बहिरंगा शक्ति माया है। माया ये विक्षेपात्मका शक्ति और आवरणी आवरण आत्मिका शक्ति, ये माया शक्ति है, त्रिगुणात्मिका है, जीव को अंधकार में डालने वाली है। और पहला अंधकार जीव को करवाती है, मैं ये शरीर हूं और शरीर के संबंधी मेरे हैं। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितय जनस्य मोहयम अहम ममेति पुंसा स्त्रिया मैथुनि भावमेतद् त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वितय जनस्य पुंसा स्त्रिया मैथुनि भावम। मैथुन भाव ये जीव को भौतिक जगत में बांध के रखता है। मैथुनि भावम एतद् मैथुनी भावम, तो ये माया त्रिगुणात्मिका शक्ति है। और जीव को अतः गृह क्षेत्र सूता लास्ट ग्लेयर ऑफ माया इज आई एम द बॉडी, मैं शरीर हूं। सो ये माया शक्ति इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण, अंधकार में डालने वाली शक्ति, आवरण चढ़ाती है। मैं शरीर हूं, ये शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर के लिए घर मेरा है और शरीर के बच्चे मेरे हैं और ये गली मेरी है, ये घर मेरा है, ये देश मेरा है, ये भौतिक जगत मेरा है। आवरण 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 आत्मिका एंड विक्षेप आत्मिका। अगर कोई जीव आवरणों में से निकल के हरे कृष्ण संस्था में जुड़ना चाहता है, प्रभुपाद के शब्द है, जुड़ना चाहता है, तो माया आएगी और विक्षेप लगाएगी, अरे ये कहाँ तू चला गया, तकला हो गया, पैसे के बिना हो गया, और क्या ना क्या कहेगी वो, कुछ सब कुछ कहेगी और आपको अवरोध डालेगी भगवान की ओर जाने में। जो भी अवरोध करता है उनका नाम है माया। माया की सिंपल परिभाषा, बिल्कुल ग्रामीण परिभाषा, भगवान की ओर जाने में जो भी अवरोध विक्षेपात्मिका विक्षेप डालती है उनको बोलो माया। ते माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, भगवान आत्म माया बहिरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति पर्सोनिफिकेशन ऑफ बहिरंगा शक्ति इस दुर्गा देवी। प्रभुपाद जी ने कई बार दुर्गा देवी दुर्गा शब्द प्रयोग किया। तो ये दुर्गा देवी ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ माया देवी, माया देवी। और माया किसमें रहती है, विग्रस फॉर्म ऑफ माया प्रभुपाद जी कहते हैं हनी एंड मनी। माया का चित्र दौड़ना है आपको तो सुंदर हनी यहां दौड़ लो, यू नो सुंदर हनी मतलब सुंदर स्त्री। मैं बयान करना नहीं चाहूंगा क्योंकि कोई अट्रैक्ट हो सकता है। कांचन और कामिनी भगवान का अवतार हुआ मोहिनी, तो शंकर भगवान ऑफकोर्स मायातीत हैं शंकर, लेकिन भगवान की और कौन अट्रैक्ट नहीं होगा, चाहे वो मोहिनी हो या डिस्काइज हो या जो भी हो, लेकिन हर जीव भगवान की ओर आकृष्ट होगा। व्हाट टू टॉक अबाउट लॉर्ड शिवा। तो यह है माया का उग्र स्वरूप, डॉलर साइन डॉलर, मनी 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 स्वीटर देन हनी। तो ये माया, माया शक्ति। तो मुनिंद्र इंद्र सब इनके पीछे। प्रभुपाद जी कल परसों में सुनता ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं, शंकर का उदाहरण देते हैं, तो हमारी हस्ती कहां, हमारी हस्ती कहां। इसीलिए ब्रह्मचारी क्लास में किसी ने पूछा था कि हाउ टू ऑब्जर्व दिस सेलिबसी, हाउ टू बिकम प्रखर ब्रह्मचारी। तभी ये शक्य है जब हम शुद्ध भक्ति में, भक्ति के स्तर पर पहुंच जाए, नहीं रहे कहीं कहीं समय तक रहे शुद्ध भक्ति के स्तर पर। जैसे हरिदास ठाकुर, माया दो बार आई लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा यस वी विल एंजॉय, हम आनंद प्रमोद करेंगे, लेकिन ये मेरा जो व्रत है, तो व्रत पूरा होते होने पर वो सो जाए। anyway, वो इससे नहीं हमारा, लेकिन ये माया शक्ति है, इल्यूजरी एनर्जी ऑफ कृष्ण। और भौतिक जगत के जीवों को ये बिल्कुल सीधा रखती है, अपने पंजे अपने चांगुल में रखती है, बिल्कुल आपको हिसकने नहीं देगी। तो ये माया शक्ति यानी जीव तटस्थ शक्ति, जीव भेद अभेद, कई बार योग माया कई बार महामाया, ये तटस्थ शक्ति है। क्यों ऐसा क्यों होता है, पेंडुलम के मुताबिक इधर उधर भागता दौड़ता रहता है, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, कद में बहुत छोटा है, इसलिए भेद। लेकिन महान जीव हो, महात्मा हो, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजंत अनन्न मनसो ज्ञात्वा माम भूतादिम अव्ययम्। ये महात्मा इधर उधर नहीं भागेगा, महामाया योग माया महामाया नहीं। महात्मा हरिदास ठाकुर महात्मा है, गांधी महात्मा नहीं है, गांधी दुरात्मा है। एक हिंदुस्तान का कल्याण किया और दूसरों को दूसरा का कोई नहीं किया, सीमित मेरा देश, ये महात्मा नहीं। वसुधैव कुटुंबकम् ये हमारा विषय नहीं है, वापस आते हैं महात्मा। महात्मा माया में नहीं जाता, वो हमेशा योग माया में रहता है। महात्मानस्तु मामपार दैवीं प्रकृति में रहता है। योग माया, योग माया की परिभाषा है कि वो माया, वो मोह जो आपको भगवान के नजदीक ले जाता है, और महामाया की परिभाषा है वो माया, वो शक्ति जो आपको भगवान से दूर ले जाती है। एक दूर ले जाती है, एक पास ले जाती है। तो ये योग माया है। तो महात्मा हमेशा योग माया में रहता है। तो वैष्णव, शुद्ध वैष्णव भक्त ही ये ब्रह्मचारी और ये सब उनसे परे रह सकते हैं। शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति करनी होगी। इसका मतलब ये है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना होगा। और शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये शुद्ध भक्ति है। तो इसके स्तर पर रहोगे योग माया समावृता। तो ये माया शक्ति है, योग माया। तो भगवान के धाम में संवित, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति, संवित संदिनी, संवित संवित और आह्लादिनी। तो ये आह्लादिनी शक्ति का सब शक्ति विस्तार है, सब शक्ति। गोलोक वृंदावन में राधा रानी, वो भी राधा रानी भी कृष्ण ही है। शक्ति शक्ति मतो अभिन्ना नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिन्न नाम नामिनो। अभिन्न शक्ति शक्ति मतो अभिन्न। तो शक्ति भी कृष्ण है और नहीं है, अचिंत भेदाभेद। राधा रानी वो कृष्ण ही है, लेकिन वो कृष्ण नहीं है। कैसे? वो आह्लादिनी शक्ति है। कृष्णा शी इज सपोज टू बी एंजॉयड बाय कृष्ण। वो भगवान को आह्लाद देने वाली शक्ति है। और वो राधा रानी का विस्तार वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में होता है, और वही राधा रानी का विस्तार कैलाश में पार्वती के रूप में होता है, और वही राधा रानी का विस्तार भौतिक जगत में दुर्गा के रूप में होता है, वही राधा रानी का विस्तार घर में गृह लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी स्त्री। तो ये सब शक्ति विस्तार, शक्ति का विस्तार। तो क्यों विस्तार? क्यों? क्योंकि भगवान, भगवान तभी हो सकता है जब वो कुछ कुछ करना नहीं है उनको। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते न तत् सम अधिकस्य उच्यते। उनको कोई कार्य नहीं। वो फेमस स्टोरी, कोई अंग्रेज आया तो देवी देवताओं को ढूंढता है, कहां भगवान है? तो कोई सब मूर्ति, तो आयुध पकड़े हुए हैं और कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा रानी की ओर तिरछी नजर से कटाक्ष से देखते हैं। ये हो सकता है ना? ये हो सकता है भगवान, कुछ काम नहीं, केवल आनंद कंद, केवल आनंद ही आनंद। उनका नाम भी आनंद और उनका स्वभाव भी आनंद, आनंद ही आनंद। तो वो भगवान हो सकते। इसीलिए भगवान अपनी शक्तियों से काम करते हैं। देवी देवताएं शक्ति है उनकी, और ये तीन शक्ति शक्ति है उनकी, शक्तियों के माध्यम से काम करते। एक देश स्थिताग्ने, एक देश स्थिताग्ने ज्योत्सना, ज्योत्सना एक देश स्थिताग्ने ज्योत्सना विस्तारिणी यथा, ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मनो शक्ति तथेदम अखिलम जगत, तथेदम अखिलम जगत। सो एक देश अस्ति, जैसे एक एक जगह पर बहुत बड़ा अग्नि है तो उनकी शक्ति हीट एंड लाइट वो विस्तार दूर दूर तक, सन और सन की शक्ति इधर तक, उनकी गर्मी उष्मा और ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा के रूप में। इसी तरह भगवान एक जगह है गोलोक वृंदावन में, या हमारे उससे ज्यादा हमारे भौम वृंदावन में, भौम वृंदावन में कृष्ण पादम एक न अभिगच्छति, वो वृंदावन भौम वृंदावन छोड़ के एक चरण एक कदम भी भगवान बाहर नहीं जाते श्री कृष्ण। इसलिए वृंदावन आना चाहिए हर साल, अगर नहीं आते हो तो आप दुर्भागी हो। वृंदावन, ये भौम वृंदावन गोलोक वृंदावन से भी ऊंचा है, हमारे गोस्वामियों ने एस्टैब्लिश किया है इस चीज, गोस्वामी कहते हैं। तो एक देश स्थित अग्नि ज्योत्सना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मनो शक्ति तथेदम अखिलम जगत, अखिलम जगत। तो भगवान अगर सब कुछ काम करने लगे तो वो भगवान कौन सा है ना, मजदूर है ना, मजदूर। लोगों के भगवान मजदूर है, हमारे भगवान मजदूर नहीं है। लोगों के भगवान उन लोगों के लिए मजदूरी करते हैं, मुझे ये दो मुझे वो दो वो देते हैं। हमारे भगवान मजदूर नहीं है, हमारे भगवान एंजॉयर, रिजर्वर प्लेजर, रसिक, रसेस, रस भी रसिक भी। वो रस है इसलिए हम उनमें से रस पी सकते हैं, और वो रसिक भी, वो रस रसज्ञ और रस का आस्वादन करने वाले भी, रस भी रसिक भी, ये हमारे भगवान। तो उनकी ये परास्य शक्ति, उनकी ये शक्ति से वो कोई काम नहीं करता। उन्हें न काम करना, न मे कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, उनको कोई काम नहीं। उनका काम एक केवल आनंद, कंद केवल आनंद, और वो आनंद लुटाएगा, इससे उनके भक्तों को भी आनंद देगा, मिलेगा उनसे ज्यादा, उनसे ज्यादा। राधा रानी की सखियां राधा रानी से भी ज्यादा, मंजरिया राधा रानी के हृदय के दर्पण है, मंजरिया दर्पण, मंजरिया राधा रानी के भाव के दर्पण है। राधा रानी जितना आनंद लुटाती है इतना ही मंजरिया उससे ज्यादा आनंद लुटाती है। ये आध्यात्मिक जगत जहां आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर वर्धन होता रहता है, भगवान की लीला वर्धन होती रहती है। कदम्ब कानन केली परायण, वर्धन परायण, परायण नो सेसेशन, स्टॉप नहीं करना। परायण मतलब परायण हम इज बिजी हमेश, परायण केली परायण। सखी सखी बिना यही लीला, सखी बिना यही लीला, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादन, हाँ सखी बिना, सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होय, चैतन्य चरितामृत। सखी के बिना श्री कृष्ण की लीला पुष्ट नहीं हो सकती, वो सखिया ही, सखिया ही भगवान की लीला का वर्धन करती है, और लीला आस्वादन का वर्धन करती है, लीला का रस का वर्धन करती है। सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला आस्वादिया, सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं होय, सखी लीला विस्तारिया सखी आस्वादन। सखिया लीला का विस्तार करती है और सखी ही ये लीला का आस्वादन करती है कृष्ण से ज्यादा। ये ब्यूटी है आध्यात्मिक जगत की, भगवान जितना आनंद करते हैं उनसे ज्यादा आनंद उनके भक्त करते हैं, इसलिए भगवान भक्त बनते हैं, है ना चैतन्य महाप्रभु। वी पास द टाइम, ये आध्यात्मिक जगत की सृष्टि क्यों की, लीला आनंद के लिए। तो कोई सवाल शंका समाधान?
शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं, प्रभुपाद के शिष्य जन्म लिया अमेरिका में, ऐसे जो प्रदेश है वो दाम बन जाते हैं, और सृष्टि का जब अंत होता है तो उस समय वो स्थान रहते हैं या वो चले जाते हैं?
रहते हैं नहीं, ये प्रभुपाद जी ने जो धाम बनाए हैं वो नॉन डिफरेंट देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज नॉन डिफरेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे मंदिर वैकुंठ है, तो वैकुंठ का नाश कैसे होगा?
हाँ जी,
हाँ जी,
प्रभुपाद के शिष्य भक्त ने जिन्होंने जन्म लिया था वो स्थान भी धाम है।
हाँ जी, हाँ जी, वो भी, हाँ जी, वो भी धाम है। परम वैष्णवों का जन्म स्थान भी धाम है, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान भी धाम, तो इसी तरह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान धाम, सब बड़े बड़े भक्त शुद्ध भक्तों का जन्म स्थान है वो धाम है। और यस, दोनों भगवान के आनंद के लिए बने। हाँ हाँ,
तो हम कैसे समझे कि दुर्ग है, जेल है, तो जो भौतिक जगत को जीवों को सुधारने के लिए बनाया गया, तो वो कैसे आनंद का स्रोत बन सकता है?
भगवान का एकमात्र आनंद हम देख सकते हैं तो वो है कि भटकते हुए जीव वापस उनके पास आए, उनसे उनको बहुत आनंद मिलता है, तो इसीलिए मैकेनिज्म उनने बनाई। तो जैसे ही जीव उनके उन्मुख हो जाए तो उनको बहुत आनंद, जैसे कि भटका हुआ बेटा, छोटा बेटा माँ बाप के पास वापस आता है तो उनको आनंद होता है। तो भौतिक जगत की डिजाइन इसीलिए बनाई ताकि भटके हुए जीव उनके पास वापस आए, वो उनका आनंद है ना? और कोई सवाल? यस, भगवान आनंद के स्रोत हैं तो उनको आनंद की क्या जरूरत है? ये वो आनंद नहीं है, सृष्टि की क्या जरूरत है? तो उदाहरण दिया जाता है कि गाय के शरीर में दूध है, लेकिन जब तक भूखी गाय को वो दूध निकाला नहीं जाएगा और पिलाया नहीं जाएगा वो दूध, तब तक गाय का पेट नहीं भर सकता, गाय दूध का आनंद नहीं मान सकती। है जरूर दूध उनके पास, लेकिन जब तक वो दूध निकाल के गाय के मुंह में नहीं रखोगे तब तक, तो भगवान आनंद के आगार है, जरूर है, लेकिन जब तक वो आनंद उच्छवलित प्रवाहित उच्छवलित बहता बहेगा नहीं और बहके उनके पास वापस आएगा नहीं तब तक, तो इसीलिए वो राधा रानी बने, राधा रानी से गोपियां बनी और गोपियों से विस्तार किया। और वेद कहता है कि एको हम बहुश्याम और रसो वै सह और रसम एवायम लब्ध्वा आनंदिम भवति, रसम एवायम लब्ध्वा रिसीविंग। सेम एग्जाम्पल आई थिंक आई गिव, पर्वत को तृष्णा लगी, पर्वत के पास पानी है, नदी पर्वत से निकलती है, तो पर्वत नदी के पास गया, मुझे तृष्णा लगी, मुझे पानी दो, तो आपसे तो पानी निकला है, आपसे तो हम गंगा आई, जमुना आई, लेकिन वो जमुना गंगा के पास जाता है हिमालय, क्यों? कि उनके पास बर्फ है, पानी है, सब कुछ है, लेकिन उनके मुंह में नहीं आ सकता जब तक वो गंगा जमुना के पास न जाए, और मुंह में आएगा, आस्वादन करेगा, बाद में वो फिर से आनंद निकलेगा, उनके पास आएगा, और साइकिल, आनंद भी आस्वादक भी, दोनों एब्सोल्यूट सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज सम टोटल ऑफ एवरीथिंग। बट जब तक उच्छलित नहीं होगा, तरंगायित नहीं होगा वो आनंद, तरंगायित होके उनके पास नहीं आएगा तब तक वो आनंद ही रहेगा। इसीलिए राधा रानी, गोपियां, मित्रा गण वगैरह वगैरह, सर्जन, सृष्टि का सर्जन, इसीलिए। और कोई सवाल? यस, जोर से बोलो। ठीक है, ये रहने दो, ये रहने दो। शुद्ध भक्त हाँ जन्म लेते हैं। हमारे जो आचार्य, हमारे जो आचार्य वर्तमान आचार्य जो है, क्यों है बीमार, क्यों है? तो ये बीमार भी उनका आनंद है, बीमारी भी उनका आनंद है। भक्त बीमार नहीं होते, शरीर बीमार होता है। तो आप कहोगे क्या उनका शरीर भौतिक शरीर? नहीं, ये सब लीला है शुद्ध भक्तों की, हमको दिखा, हमें दिखाने के लिए। भगवान का भक्त कभी भी दुखी नहीं हो सकता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। ये इल्यूजन है कि भगवान का भक्त दुखी है, बीमार है, ये है वो है। भगवान के भक्त हमेशा भगवान के साथ आनंद में मौज करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो। करना फकीरी और दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भौंय पे सोना जी, क्या फर्क पड़ता है? फकीरी मतलब भक्ति करना और दिलगिरी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अगर हाथ है तो पिलो की क्या जरूरत है, अगर अंजलि है तो पात्र की क्या जरूरत है? तो क्या वो दुखी है? क्या वो दुखी है? नहीं, भगवान के भक्तों का स्तर कुछ और, उनका सुख कुछ और है। और हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं, उनका शरीर भौतिक है, उनके भौतिक शरीर में भौतिक रोग लगा है और भौतिक रोग से वो पीड़ित है और वो दुखी है, वो रो रहा है। वो नहीं, उनका रोना भगवान के प्रेम में रोना है। उनका रोना है नहीं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास मेरा दुख, मेरा ये नहीं। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस में कितनी पीटा है, अंत में वो प्रार्थना करते हैं, अंत में वो कहते हैं कि ये लोगों को राजा पीटेगा, इससे अच्छा मैं मर जाने का ढोंग करूं, है ना? ढोंग किया। हरिदास ठाकुर कुछ भी कर सकते थे, वो ब्रह्मा है और सिद्धि के मालिक हैं, उनके आंख के इशारे से वो सब सिपाहियों को खत्म कर सकते। हमें लगता है कि हरिदास ठाकुर को पिटाई हो रही है, कितने दुखी है, कितने नहीं, ये हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदलना होगा। तो भक्त कभी भी दुखी नहीं होता, और दुखी ऊपर सुपरफिशियली दुखी दुख मांगते हैं, जैसे कुंती मांगती है कि इनो विपद संतु सत्साश्वत तत्र तत्र जगत गुरु अपुनर्भव दर्शनम, आपके दर्शन होंगे। तो ये दर्शन के लिए मैं दुख मांग रही, तो वो दुख दुख है क्या? वो दुख दुख नहीं है, वो सुख, दर्शन का सुख के आगे थोड़ा सा दुख कुछ नहीं है, कोई गिनती नहीं, वो दर्शन का सुख चाहती है। तो भक्तों को लगता है कि भक्त दुखी है, पांडवगण दुखी है? नहीं, पांडव का दुखी नहीं थे, हर पल कृष्ण जिनके पास, कृष्णा जिनके घर में इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो वो दुख है, सुख कृष्ण का सान्निध्य है ना? तो लगता ऐसा है कि ये बड़े बड़े भक्त लोग दुखी हैं, और नहीं, भक्त दुखी हो ही नहीं सकता। क्लेश अग्नि पहले, सबसे पहला लक्षण शुद्ध भक्ति का है कि सब क्लेश मिटाती है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा कुंज विहारी की, श्री श्री गौर निताय की, लक्ष्मी नरसिंह देव की, सद्गुरु स्वामी प्रभु की, सामवेद भक्त वृंद की। आप सब भक्त वृंद की, आप सब भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी।